तीर्थ यात्रा के पुण्य से अपनी कलापीठ की उत्तराधिकारिणी खोजने में सफल मनोरथ होकर देवी मल्लिका के सागल नगरी में लौट आने से साधारण जन और अभिजात समाज दोनों ही अत्यंत पुलकित और उत्साहित हुए। देव मल्लिका को संतुष्ट करने में समर्थ नर्तकी रत्न के दर्शनों के लिए सांगल का समाज व्यग्र हो उठा। दूरवर्ती नगरों और गांवों से भी अनेक रसिक और कलाविद पधारने लगे। उस रमणी श्रेष्ठ के दर्शन पाने के लिए देवी के प्रसाद में समाज के समय विराट जनसमूह एकत्र हो जाता। कंधे से कंधे भिड़ते रहते और आसन के लिए स्थान पाना कठिन हो जाता। परंतु नवागंतुक उत्तराधिकारी के दर्शन कोई न पा सका। वह देवी के अंतरपुर में रहती। मल्लिका ने घोषणा की, अपनी उत्तराधिकारिणी कला की अधिष्ठात्री का अभिषेक वह फाल्गुन की पूर्णिमा के शुभ पर्व पर करेगी, तभी जन उसका दर्शन पा सकेंगे। एक मास की वह प्रतीक्षा सांगल के जन समाज के लिए अत्यंत अधीरता का कारण थी। देवी मल्लिका ने एक विराट बलि यज्ञ का अनुष्ठान देवताओं की तुष्टि के लिए किया। उस यज्ञ में 100 विद्वान याज्ञिकों ने स्वास्थ्य वाचन किया और पुरोहित का आसन मल्लिका के अनुरोध से धर्म के व्यवस्थापक गण परिषद के महामात्य महापंडित महाआचार्य रुद्रधीर ने ग्रहण किया। मल्लिका के उत्तराधिकारिणी के अभिषेक का आयोजन रजत पुष्करणी के तट पर किया गया। वेदी के सम्मुख विस्तृत अर्धचंद्राकार पंक्तियों में सामंतगण, द्विज, कुलपति, अभिजात समाज और गण परिषद के सदस्यों और कुलनारियों के लिए आसन थे। उसके पश्चात सांगल के धनिक वर्ग श्रेष्ठियों, श्रेष्ठ जठकों और अंतरप्राण के ज्येष्ठकों अन्य उनके परिजनों के लिए स्थान था। तदंतर सैनिक वर्ग और सर्वसाधारण जन का सागर दृष्टि की सीमा तक उत्सुकता से उमड़ रहा था। केंद्र में सिंहासन पर तदगुणानिधान महासामंत परम भट्टारक श्रीदेव सवार्थ और उनके समीप महामात्य महाआचार्य रुद्रधीर शोभायमान थे। कौतूहल का दमन न कर सकने के कारण अनेक वीतराग भिक्षु भी विशाल जनसमूह में अपने कासाय चिवरों में उपस्थित थे। वेदज्ञ ब्राह्मणों ने स्वस्तयन किया। नगर की प्रधान नर्तकियों और मल्लिकाओं की शिष्या ने मंगल चरण और स्वागत उपाचार किया। नक्षत्रज्ञ ब्राह्मण ने देवी मल्लिका के उत्तराधिकारी के लिए अमर कीर्ति की भविष्यवाणी की। शुभ लग्न में श्वेत पुष्पों में आच्छादित शिविका में कला की नवीन अधिष्ठात्री को वेदिका पर लाया गया। मल्लिका ने अपने वत्सल्य करों से स्वयं अपने उत्तराधिकारी को शिविका से उतारकर अपने आसन पर आश्रित किया। शुभ अवसर के लिए मल्लिका ने अपने करों से अपने उत्तराधिकारी का श्रृंगार किया था। उसका मुखमंडल मुक्तावलियों के शेखरों से अदृश्य था। जनसमूह चरम उत्सुकता से उत्सव का अनुष्ठान समाप्त होने पर मल्लिका के उत्तराधिकारी के दर्शन पाने की प्रतीक्षा कर रहा था। वेद पाठी ब्राह्मण ने पात्र में मंत्र पूत अक्षत चंदन दुर्वा और रोली पात्र में मल्लिका के सम्मुख उपस्थित किए। देवी मल्लिका ने अपने दक्षिण कर की अनामिका अंगुली से रोली और अक्षत लेकर मुक्तावलियों के शेखरों में छिपे उत्तराधिकारी के मस्तक पर तिलक कर दिया। शंख, भेरी, तुरही और नगाड़ों की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। संभ्रांत विशिष्ट जन अपने आसनों से उठकर नव जनपद कल्याणी के प्रथम दर्शन की भेंट अभिषेक के आसन से सम्मुख रखने लगे। अभिषेक तिलक कर देवी मल्लिका ने नत जानु ही हो कला की नवीन अधिष्ठात्री के चरणों की वंदना की। आतुर और व्यग्र जन अभिषिक्त जनपद कल्याणी के दर्शनों के लिए कोलाहल कर रहा था। मल्लिका के संकेत से चारण ने शंखनाद किया। जन सहसा स्तब्ध हो गया। देवी ने अपनी उत्तराधिकारिणी के मस्तक से मुक्तावलियों का शेखर दूर कर जन को उसका दर्शन कराया और स्वयं जन के सम्मुख वंदना के लिए नत जान होकर मस्तक झुका दिया। जन समूह श्वास रोके स्तब्ध नवीन जनपद कल्याणी की ओर दृष्टि लगाए थे। कुछ पल तक स्तब्धता रहने के पश्चात अभिजात वर्ग की पंक्तियों में से अस्पष्ट अस्फुट गुंजन सा उठने लगा। तात धर्मत्स की पौत्री दिव्या, विष्णु शर्मा की पौत्री दिव्या, द्विज कन्या दिव्या, कुल कन्या दिव्या, विप्र कन्या दिव्या। जन की वंदना से मस्तक उठाकर मल्लिका ने देखा, सामंत वर्ग और अभिजात समाज की पंक्तियां विस्खिल हो रही थी। क्षण भर में ललकार सुना दी। मध्य में द्विज कन्या वेश्या के आसन पर बैठकर जन के लिए भोग्य बनकर वर्णाश्रम को अपमानित नहीं कर सकती। आचार्य भृगु शर्मा ऊर्ध्वभाव खड़े होकर आवेश में कांप रहे थे। वह ललकार पर्वत श्रेणियों से आविष्टित उपत्यका में मेघ की गर्जना के समान सब ओर प्रतिध्वनित होने लगी। अभिजात वर्ग की पंक्तियों में नरमुंडियों के ऊपर कुछ खड्ग दिखाई देने लगे और फिर अनेक खड्ग। देवी मल्लिका स्तब्धता आवाक निष्फल खड़ी रही। चारों ओर बढ़ते तुमुल कोलाहल में वे हतज्ञान हो गई। दिव्या सिर झुकाए मौन बैठी रही। दिव्या अपने आसन से उठ खड़ी हुई। शांत पगों से जन की ओर जाकर वह वेदी के किनारे पर खड़ी हो गई। उसका हाथ मौन के संकेत से उठ गया, कोलाहल सा शांत हो गया। दिव्या का सर सुनाई दिया, जन समाज और कुलवर्ग सुने, मैं इस विषय में धर्म व्यवस्थापक नीतिविद आचार्य रुद्रधीर का निर्णय जानना चाहती हूँ। जन समाज और कुल की दृष्टि महामात्य के आसन पर आसीन रुद्रधीर की ओर गई। आचार्य मौन थे, उनके उत्तर की प्रतीक्षा में जनसागर मौन था। उठे हुए खड़गों का समूह निश्चल था। आचार्य के मौन से जन समाज अधीर होने लगा। विचार में मस्तक झुकाए आचार्य का क्षीण स्वर सुनाई दिया, वर्णाश्रम की व्यवस्था त्रिकाल के लिए सत्य है। दिव्या उस निर्णय को मनस्थ करने के प्रयत्न में क्षण भर आचार्य की ओर निष्फलक देखती रही। मौन स्वीकृति के संकेत में उसका सिर झुका दिया। अस्तु, दिव्या वेदी से उतर कर एक ओर चल दी। राजहंसनी के सम्मुख फटती जाति सरोवर की लहरों के समान समूह उसके लिए मार्ग देता जा रहा था। दिव्या मस्तक ऊंचा किए किसी को ओर न देखकर चली जा रही थी। दिव्या अभिषेक की वेदी से उतरकर अप्सरा के वेश में निराश्रय सागल के राजपथों पर पैदल चली जा रही थी। विराट जनसमूह कोताहल का दमन न कर सकने के कारण उसके अंतर पर पीछे पीछे चला जा रहा था। दिव्या ने घूम कर उस ओर न देखा। वह हंसों के समूह के सम्मुख नेता राजहंस की भांति निश्चल ग्रीवा उठाए चली जा रही थी। दिव्या नगर के बाहर आ गई। सूर्यास्त हो चुका था। फाल्गुन पूर्णिमा का चंद्रमा क्षितिज से ऊपर उठ चुका था। संध्या के आरंभ में चंद्र की निस्तेज ज्योत्सना फैल रही थी। उस क्षण आलोक में दिव्या ने पूर्व दिशा में दिगंत तक फैले मार्ग की ओर देखा और शांति का एक निश्वास लेकर नगर द्वार के बाहर बनी पंथशाला की ओर दृष्टि की। रात्रि में दीर्घ पथ पर अकेले यात्रा करने की दुविधा में दिव्या क्षण भर मार्ग पर खड़ी रही और फिर रात्रि पंथशाला में व्यतीत करने के विचार से उस ओर मुड़ गई। रात्रि में नगर द्वार मुद जाने के पश्चात द्वार पर पहुंचने वाले यात्री इस स्थान पर रात्रि बिताते थे। प्रातः सूर्योदय से पूर्व यात्रा आरंभ करने की इच्छा रखने वाले यात्री भी संध्या समय वहीं आकर टिकते थे। दिव्या पंथशाला के द्वार से आंगन में होती हुई आलिंद पार कर एक अंधियारे कक्ष में जा बैठी। जनसमूह भी कौतूहल से उसके पीछे पीछे चला आकर सैन्य सैन्य आंगन में भरने लगा। आंगन मधुछत्र की भांति गुंजायमान हो उठा। आंगन में स्थान न रहने पर जन पंथशाला के प्राचीरों को घेर कर एकत्र होने लगा। कौतूहल, अधीरता, विरोध और संवेदना से प्रेरित होकर नागरिक अनेक प्रकार के प्रसंग अभिषेक च्युत राजनर्तकी के संबंध में उठाकर परस्पर ऊंचे स्वर में वाद प्रतिवाद कर रहे थे। पंथशाला का रक्षक राजपुरुष उस अव्यवस्था से खिन्न होकर जन को पंथशाला का मार्ग और आंगन पथिकों के लिए छोड़ देने के लिए ऊंचे स्वर में पुकार रहा था, परंतु उसकी बात जनरव में अनसुनी ही रह जाती। पंथशाला का द्वार मूद देना भी संभव न रहा। एक भिक्षु ने जनसमूह के समीप आकर ऊंचे स्वर में पुकारा, हे नागरिकों, समाज में प्रताड़ित दुखी नारी के समीप जाने का मार्ग मुझे दो। अभिषेक च्युत राजनर्तकी के समीप जाने का मार्ग दो। हे नागरिकों, मैं उस क्लेशिता को शांति देने आया हूँ। भिक्षु की पुकार भी कोलाहल में अनसुनी ही रह गई। सूर्यास्त और चंद्रोदय के मिश्रित झिलमिल आलोक में पूर्वी मार्ग से एक पथिक चला आ रहा था। पंथशाला को घेरे हुए जनसमूह को देखकर और कोलाहल सुनकर पथिक के दूत पग स्थिर और रुक गए। पथिक के केशों, मुख, वस्त्रों और पांव पर जानों तक चढ़ी धूल उसके दिन भर राजमार्ग पर पैदल चलने के प्रमाण था। पथिक ने उस भ्रामक आलोक में अपने नेत्रों पर बल देकर जनसमूह को देखा और कानों को सतर्क कर कोलाहल का अर्थ समझने का यत्न किया। केवल भिक्षु की पुकार उसे अस्पष्ट सुनाई दे रही थी। पथिक मार्ग छोड़कर पंथशाला को घेरे जनसमूह की ओर आ गया। उसने समूह का संबोधन किया, हे सांगल के सौम्य नागरिकों, क्या मथुरापुरी से आने वाली नर्तकी अंशमाला का अभिषेक पूर्ण हो गया? वह अभिषेक देखने की कामना से ही द्रुत वेग से पैदल चला आ रहा हूँ। 2 मास तक सामर्थ्य भर वेग से चलकर भी मैं इससे पूर्व सांगल न पहुँच सका। सौम्य नागरिकों, पथिक को समाचार दो, क्या अंशमाला के अभिषेक में विघ्न पड़ गया? नागरिकों, अंशुमाला का कुछ अनिष्ट तो नहीं हुआ? व्यस्त जनसमूह में से एक व्यक्ति ने उसकी ओर ध्यान दिया। ओह, मूर्तिकार दार्शनिक मारिश, कौन अंशुमाला? द्विजकन्या यशस्वी धर्मस्य देव शर्मा की पपौत्री। हाँ, मारिश की अनुमति का संकेत किया। दिव्या ने सांगल की राज नर्तकी के पद की कामना की थी। नागरिक ने मारिश का समाधान किया। वर्णाश्रम की व्यवस्था से अभिषेक च्युत होकर दिव्या ने नगर छोड़कर इसी पंथशाला में शरण ली है, क्या तुम इसी क्षण? पृथिक शेष बात अनसुनी कर पंथशाला के द्वार की ओर बढ़ गया। भिक्षुक और पृथक दोनों ही विराट समूह को भेद कर पांथशाला के द्वार की ओर बढ़ने का यत्न कर रहे थे। पथिक पुकार कर कह रहा था, हे सौम्य नागरिकों मुझे पांथशाला का मार्ग दो, हे भद्र नागरिकों मुझे पांथशाला का मार्ग दो, मैं उस पीड़ित नारी को सांत्वना दूंगा, हे नागरिकों मुझे मार्ग दो, मैं उस नारी के लिए सूरसेन से पैदल चलकर आया हूँ, इसी क्षण यहाँ पहुँचा हूँ। भिक्षु पुकार रहा था, नागरिकों मैं प्रत्याड़ित नारी को धर्म की शरण में लेकर शांति देने आया हूँ, मुझे मार्ग दो। व्यग्र जन समूह ने न पथिक की ओर न पंथशाला के रक्षक की पुकार सुन पा रहा था। आंगन के समीप स्थान में समूह ऐसा भर रहा था कि किसी के लिए भी हिल सकना संभव न था। सहसा नगर द्वार के तोमर से घड़ियाल बजने का शब्द सुनाई दिया और एक राजपुरुष ने तोरण पर खड़े होकर चेतावनी दी, नगर द्वार मुदने का समय हो गया है, नगर प्राचीन में शरण चाहने वाले द्वार में प्रवेश करें। पंथशाला के आंगन से जन प्रवाह द्वार की ओर और पंथशाला के द्वार से नगर द्वार की ओर भर चला। उस प्रवाह को भेद पाने में असमर्थ होने के कारण पथिक और भिक्षु के पद पीछे की ओर पड़ने लगे। उसी समय एक तूर्य का शब्द सुनकर जन का कोलाहल अस्तब्ध हो गया, नगर द्वार की ओर बढ़ती जन समूह भी स्थिर हो गया। नगर द्वार से चार दीप दंडधारी अश्वरोही प्रकट हुए और उनके पीछे तूर्य बजाता हुआ एक अश्वरोही ने आकर समूह को संबोधन किया, सावधान सावधान जन, श्रीगण परिषद के महामात्य धर्म व्यवस्थापक महासामंत रुद्रधीर के लिए मार्ग दें। जन ने जय घोष से आचार्य का अभिवादन किया, तुरंत मार्ग प्रशस्त हो गया। आचार्य रथ से उतरे, पांथशाला के रक्षक राजपुरुष ने नतजानु होकर उन्हें प्रणाम किया। आचार्य गंभीर स्वर में बोले, पांथशाला में आने वाली नर्तकी कहाँ है, रक्षक मार्ग दिखाओ। पांथशाला का रक्षक मार्ग दिखाता हुआ आलंद की ओर बढ़ा। अस्तब्ध जनसमूह काष्ठ के मूर्तियों के समान निश्चल था, परंतु भिक्षु और मथुरापुरी से आया पथिक मारिश अवसर पाकर आचार्य के पीछे पीछे चले। चार दीप दंडधारी कच्छ के चारों कोनों में खड़े हो गए। अंधियारा कच्छ प्रकाश से जगमगा उठा। दिव्या अप्सरा के वेश में भित्ति का सहारा लिए भूमि पर बैठी थी। उसने मस्तक उठाकर आगंतुकों की ओर देखा, वह निश्चल बैठी रही। द्वार से झांकता हुआ जनसमूह विस्मय से मौन था। दिव्या ने स्थिर दृष्टि से आचार्य की ओर देखकर प्रश्न किया, इस प्रताड़िता के लिए अब और क्या आज्ञा है। भूमि पर बैठी दिव्या के सम्मुख कंचुकी द्वारा बिछाया आसन ग्रहण कर आचार्य बोले, देवी तुम्हारा स्थान नर्तकी वेश्या के आसन पर नहीं, तुम कुल कन्या हो, तुम्हारा स्थान कुलवधि के आसन पर, कुल माता के आसन पर है। आचार्य रुद्रधीर देवी को आचार्य कुल की महादेवी के आसन पर स्थान देने के प्रयोजन से उपस्थित है, देवी अपना स्थान स्वीकार कर आचार्य को कृतार्थ करें। दिव्या ने निष्फलक दृष्टि आचार्य के मुख पर स्थिर किए गंभीर स्वर में उत्तर दिया, आचार्य कुलवधु का आसन, कुलमाता का आसन, कुल महादेवी का आसन दुर्लभ सम्मान है। यह किंचन नारी उस आसन के सम्मुख आदर से मस्तक झुकाती है, परंतु आचार्य कुलमाता और कुलदेवी निरादित वेश्या की भांति स्वतंत्र और आत्मनिर्भर नहीं है। ज्ञानी आचार्य कुलवधु का सम्मान, कुलमाता का सम्मान और कुल महादेवी का अधिकार आर्य पुरुष का प्रश्रय मात्र है। वह नारी का सम्मान नहीं, उसे भोग करने वाले पाराक्रमिक पुरुष का सम्मान है। आर्य अपने स्वतत्व का त्याग करके ही नारी का वह सम्मान प्राप्त कर सकती है। कुछ क्षण मौन रखकर दिव्या बोली, ज्ञानी आर्य जिसे अपना स्वतत्व ही त्याग दिया, आचार्य दासी को क्षमा करें, दासीहीन होकर भी आत्मनिर्भर रहेगी, स्वतत्वहीन होकर भी वह जीवित नहीं रहेगी। आचार्य अपने असीम क्षमता में असमर्थ अनुभव कर दिव्या की कठिन मूर्ति की ओर विवश दृष्टि से दृष्टि किए मौन बैठे रहे। आचार्य मौन बैठे थे, उस समय आचार्य के आसन के समीप आकर भिक्षुक ने पुकारा, आर्य तथागत का सेवक भिक्षु पितृसेन समाज में प्रताड़ित नारी को तथागत की शरण में ग्रहण करने के लिए उपस्थित है। दीपदंडों के प्रकाश में सम्मुख खड़े काशकाय चिविर भिक्षु का स्वर सुनकर उसे पहचान कर दिव्या के नेत्र फैल गए। एक कंपन सा उसके शरीर में अनुभव हुआ, एक गहरे श्वास में उसका वक्ष ऊपर उठा और वह भिक्षु की ओर दृष्टि लगाए फिर निश्चल हो गई। आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाकर भिक्षु पितृसेन बोला, देवी तथागत की कृपा से तुमने आसक्ति और मोह के भ्रम को जानने का अवसर पाया है। देवी शांति वैभव में नहीं, शांत प्रभुता में नहीं, शांति भोग में नहीं, शांति तृप्ति में नहीं, देवी शांति केवल अनासक्ति में है, चिरंतर सुख केवल निर्वाण में है। देवी संसार के पीड़ित समाज से प्रताड़ित जन बुद्ध की शरण में, धर्म की शरण में, संघ की शरण में शांति पाते हैं। देवी उस अपार करुणा की शरण को ग्रहण करो। मौन दिव्या की दृष्टि क्षणभर के लिए धुंधली हो गई। देवदंड से प्रकाशित कक्ष में अधिकार और शक्ति की प्रतिमा महामात्य रुद्रधीर और काशकाय शिविरधारी भिक्षु उसकी दृष्टि से लुप्त होकर मथुरापुरी के महाबोध विहार के मुदे पटों के सम्मुख वृक्ष के नीचे संतान की गोद में लिए असरण आर्त नारी भगवान बुद्ध धर्म और संघ से शरण की भिक्षा मांगती दिखाई देने लगी। दिव्या के नेत्र पुनः दीप्त हो गए। कंपित स्वर में दिव्या ने प्रश्न किया, भंते भिक्षु के धर्म में नारी का क्या स्थान है? भिक्षु ने धीर स्वर में उत्तर दिया, देवी भिक्षु का धर्म निर्वाण है, नारी प्रवृत्ति का मार्ग है, भिक्षु के धर्म में न्यारी त्याज्य है, भंते अपने निर्वाण धर्म का पालन करें। दिव्या ने मंद परंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, नारी का धर्म निर्वाण नहीं सृष्टि है, भिक्षु उसे अपने मार्ग पर जाने दें। उपस्थित जनसमूह की स्तब्धता से अवसर पाकर पूर्व देश से आए पथिक ने भिक्षु के समीप आकर पुकारा, मैं मारिश देवी के सामिप्य के लिए ही मथुरापुरी से सांगल आया हूँ। दीपदंड के प्रकाश में दिव्या के श्रांत नेत्र पुनः विस्मय और जिज्ञासा से फैल कर चमक उठे। धूल धूषरित पथिक बोला, मारिश देवी की राज प्रसाद में महादेवी का आसन अर्पण नहीं कर सकता, मारिश देवी को निर्वाण के मिथ्या चिरंतन सुख का आश्वासन नहीं दे सकता, वह संसार के सुख दुख अनुभव करता है, अनुभूति और विचार ही उसकी शक्ति है, उस अनुभूति का ही आदान प्रदान वह देवी से कर सकता है, वह संसार के धूल धूसरित मार्ग का प्रतीक है, उस मार्ग पर देवी के नारित्व की कामना में वह अपना पुरुषत्व अर्पण करता है, वह आश्रय का आदान प्रदान चाहता है, वह नश्वर जीवन में संतोष की अनुभूति दे सकता है। पल भर सोचकर मारिश ने कहा, संतति की परंपरा के रूप में मानव को अमरता दे सकता है। भूमि पर बैठी दिव्या अनेक क्षण विचार में गिरुवा झुकाए रही, फिर उसने सहसा भित्ति का आश्रय छोड़ दिव्या का स्वर आर्द हो गया, आश्रय दो आर्य, आश्रय दो आर्य।